चंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनो गिरः कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि नयिमानुतया गुणा इति विज्ञं राधे तं नयनामचरणम् भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्मी सिद्ध्वाश्च कामावितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणानन्द
श्री बृहद्भगवतामृत जब बलदेव जी ने कृष्ण को ब्रज भाव में निमग्नता से निकालकर और उन्हें द्वारका के भाव में लाया तभी पूरा तरह से अभी उनको यह ठीक बात समझ में नहीं आ रही थी कि मैं द्वारका में हूँ किंतु हमारा बेस तो ब्रजवासी जैसा दिखता हूँ, समुद्र के किनारे गैया चराने आया, ये सब कैसे हुआ। तपलदेव जी ने बतलाया ये आप वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, अभी द्वारका के आप राज्याधीश हैं, इसलिए युधिष्ठिर पर विपत्ति पड़ी है आपके लिए, अनुसार इत्यादि उनको बहुत ही तंग कर रहे हैं, उनकी रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। तो वो बड़े क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के बोले अनुस्वाम की बात क्या है, और जितने भी राक्षस जो महाराज युधिष्ठिर को और उनके भाइयों को तंग कर रहे हैं मैं अकेले जाकर के उन्हें मारा होगा। इस प्रकार से इतने में बलदेव जी कुछ हंसे और कृष्ण भी मुस्कुराए और देखा पुरी के बाहर में समुद्र गर्जन कर रहा है, वहां पर गायें खड़ी हैं और संशयास्पद होकर के देखा जी ब्रज का भाव हमको। इस प्रकार से उनको हंसते हुए देख करके बलदेव जी भी मन ही मन में वो भी मुस्कुराने लगे और इसके बाद में उनको बतलाया कि किस प्रकार आप ब्रज के भाव में मुक्त हो गए, यशोदा मैया ब्रज के लिए आप किस प्रकार से मूर्छित हो गए, हम भी मूर्छित हो गए, तो ब्रह्मा जी ने ये सब उपाय किया है कि आपको कैसे स्थिर किया जाए। इसलिए ब्रह्मा जी ने उपाय बना करके गरुड़ को भेजा, गरुड़ आपको यहाँ लाए, विश्वकर्मा ने ये सब मूर्तियाँ रची और ये गायें भी उन्हीं की बनाई हुई हैं। अब आपको स्वस्थ चित्त हुआ, अब द्वारकापुरी में चलनी है और युधिष्ठिर इत्यादि की रक्षा करनी है। यद्यपि यहाँ पर हिरी शब्द है, ततो ही इव ज्येष्ठ मुखम पश्य निस्मितम शितो रामेण उद्धत्त तत्राब्धौ स्नापिता धूलिधूस। यहाँ पर हिंद माने होता है ह्री माने लज्जा, किंतु ह्री माने केवल लज्जा नहीं होती, इसको दिखला रहे हैं। यहाँ ह्री यू कहने का तात्पर्य है अतः तो लज्जा के समान, कृष्ण लज्जित हुए ऐसी बात नहीं, लज्जा के समान। परम परम श्लाघ्य कर्मे प्रवृत्त हो या छिलेन बोलिया तहाते लज्जा राही की थी। कृष्ण यहाँ पर कोई लज्जा की बात नहीं है, क्योंकि कृष्ण एक बड़े भारी गंभीर कार्य में नियुक्त हुए थे। वो गंभीर कार्य क्या था? गोपियों की महिमा का वर्णन था। संसार के लोग, भक्त लोग, सब ये लोग समझें कि गोपियों की महिमा कैसी है। गोपियों की महिमा कोई भी बोलने में समर्थ नहीं है, कुछ कुछ हूँ, इसलिए मैं इसका वर्णन करने के लिए नारद जी के हृदय में प्रेरणा दी और वो वहाँ से गंगा के किनारे प्रयाग से भक्तों के पास जाते और कहते आप ही धन्य हैं, वो अपने से बड़े को धन्य मानते। इस प्रकार से अब द्वारका तक नारद जी आए हैं। मूल कारण क्या? जो नारद जी नहीं कर सके और जो उद्धव नहीं कर सके और गोपियों की सारी महिमा रह गई, उस महिमा को बतलाने के लिए अब कृष्ण स्वयं उन्मुख हो रहे हैं। विशेष करके गोपियों का कृष्ण के प्रति जो पार्थिव भाव था, उस पार्थिव भाव में स्वकीय से क्या पार्थक्य है, क्या पार्थक्य हो, पार्थिव गोपियों का कृष्ण में कैसा प्रेम है, ये कृष्ण भी नहीं समझ सकते। इसलिए सचिनंदन गौरव के रूप में आए, राधा जी की भाव और ज्योति दोनों। गोपियों की महिमा केवल विशेष करके राधा जी की महिमा ललिता विशाखा जी उसका कृष्ण ने उनसे सीखा और तब फिर वही विशेष कार्य में संलग्न है। इसलिए इसमें लज्जा की बात क्या है? इसमें तो लज्जा की बात नहीं, अपने पराक्रम का बखान नहीं रहे हैं जैसे कि लज्जा हो। लज्जा इसलिए हो रही है, लज्जा की भांति है किंतु लज्जा नहीं, बहुत विशेष महत्वपूर्ण काल में ये सब लग रही है। विल एक्सप्लेन हरण महाराज हैज कम ऋषि गौर सुंदर कैन ट्राई नो तुम्हें तीर्थ महाराज कभी कभी बोल सकते हैं, देखेंगे कैसा बोलते हैं तीर्थ महाराज। करताल तो
हरे कृष्णा। सो गुरुदेव एक्सप्लेन टुडे दैट श्री बलभद्र प्रभु टुक आउट कृष्णा फ्रॉम रजमोहन, because Krishna was completely absorbed in Rajamohan. Krishna could not understand, who am I? I am in Dwarka or anywhere else? That if I am in Dwarka, that why I am in Braj dress? And I am grazing cows here. Could not understand. He can be well that. And Sri Balabhadra Prabhu told, oh, you are son of Devaki and Vasudev. Due to you, because we have some, Yudhishthira Maharaj has some sraddha and affection towards you. So Anusala and others, They are making chaos for Yudhishthira Maharaj. They are told, what? Due to me, they are harassing my devotee. Okay. Let's wait a little. I shall go all alone. And I shall kill Anusava and other demonic mentality person. Don't worry. I can do everything by my alone. Now Krishna came out for Braj mood. Then Krishna began to smile. And Baladev was smiling inside. In other hand, Ocean was roaring very loudly. Krishna told, oh, I am in Braj. But where? Baladev was no. You were absorbed so much in Braj mood, then you became senseless. And me too. Then Brahmaji, he thought how to make Krishna settle down. So Brahmaji called Guru and he put yourself and myself on the back of Guru and brought here. And which statues you are seeing? They are all made by Vishwakarma. Nandarava, Yasodama, cows, gopis, all are made by Vishwakarma. By order of Brahmaji. Now we have to go back to Dwarka. After that, Gurudev recited one slok. In that slok, there is one word, free evil. He means lajja, means shyness. So for Krishna, Krishna never became ashamed. Why not? Because it seems to be ashamed, but not ashamed at all. Why not? Because Krishna was engaged himself to do oneself very deep and great work, great, deep and great task. What is that? Krishna wants to glorify the gopis in the whole world. So none can do that. Who can explain gopis, glory of gopis, especially Srimati Radhika? So none can do. Even Uddhava, Narada, they could not do so. So Sri Krishna, he inspired and infused in the heart of Narada Rishi. Then Narada Rishi went to Ganga Sagar from there. To whom is he to allow? You are the best recipient of Sri Krishna. After that, he came gradually to Dwarka. So Krishna thought, I have to do myself the glories of gopis. But he could not do so. So Krishna came in form of Suchinandan Gaurbhari. And then he explained the glory of gopis. Who can explain Srimati Radhika's glory? Lalita, Visakha and others, they can do. They can glorify Srimati Radhika. Other than Lalita, Visakha, Nandaranga Srimati Radhika's glory. So Krishna went to them, means in form of Mahaprabhu. Then he learned, then he glorified Srimati Radhika's glorification. Hare Krishna.
और भी बतला रहे हैं कि हिरिंग माने जो लज्जा होती है, लज्जा किसी कोई पाप कर्म में संलग्न हो, अकर्म में, विकर्म में, चोरी, बदमाशी, व्यभिचारी में यदि हो और उसके सामने कहा जाए तुमने क्या किया तो उसको लज्जा है। अथवा कोई वीर व्यक्ति हो और किसी से हार गया और उसको और तुम हार गया तो उसको लज्जा है। किंतु यहाँ पर हृदय का तात्पर्य केवल इससे से ही नहीं है, इससे बहुत कुछ ऊपर है, इतना ही नहीं। कृष्ण का यह काम बहुत ऊंचा है, जो गोपियों की प्रशंसा की, किंतु फिर भी ये लोगों को मैंने मूर्छित हो गया और हमारा ऐसा काम हुआ जो कि देवकी मैया, रोहिणी और सब वहाँ आए हैं, सत्यभामा, रुक्मिणी सब वहाँ पर आए हैं, पद्मा आई है और इनके इस ब्रज के भावों को जो दर्शन किया अब इनको लज्जा रही। इसलिए गोपियों के प्रति कृष्ण का व्यवहार दूसरे के सामने नहीं कर सकते, जसोदा मैया के सामने नहीं कहेंगे, अब उनको इसके लिए लज्जा हो रही, ये व्यापक अर्थ में समझो, ये इनके सामने हमने क्यों प्रकट किया प्रेम के भाव, इसलिए वो सारा विषय हरि के द्वारा का बतलाया गया, जो लज्जा के दो कह देते जो लज्जित हुए, लज्जित नहीं, हरि का व्यापक अर्थ है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ। दूसरी बात, रामेण और व्यक्त त्रप त्राप धोषणा की तो कृष्ण उस समय धूलि धूसर है, धूल से भरे हुए हैं, क्योंकि वो बाहर में ही आंगन में गोपियों के प्रेम दशा को चिंतन करते 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 गिर पड़े, उच्छित होकर लौटने लगे वो और बलदेव दोनों, इसलिए अंगों में धूलि धूसरी हो गई। इसलिए बलदेव प्रभु जी ने वो जो कृष्ण का उस समय का जो वेश था उसको हटा करके, क्या बंसी को हटाया, व्रज के भाव को मोर मुकुट को हटा दिया, और अंगों में जो धूलि लगी थी ये भी एक क्या है, ये भी कोई उद्दीपन भाव है, ब्रज का उद्दीपन। क्यों हुआ ऐसा, ब्रज का भाव चिंतन कर रहा, इसलिए धूल को हटाने के लिए उनको ले गए समुद्र में स्नान कराया कृष्ण को, अपने भी स्नान किया, और स्नान करके उनको स्थिर किया, इतने में गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी आकर के कृष्ण के पास बैठ गए, और कृष्ण उस गरुड़ पर बैठ करके अपने अंतर महल में राजभवन में पहुंच गए। बोलेंगे
now Sri Aurobindo explained from Sanatana Goswami's commentary where this tree means ascent will apply. If someone is a thief or scoundrel, gangster, jabuchi, for them it will apply this word tree or ascent. Or if any heroic person defeated by others, then if one will ask, oh, you defeated by him, then he will ascend. But for Krishna, he is doing very great task. What is that? He is glorifying, he is praising gopis. So Krishna, no need to be ashamed. Krishna said, oh, I became senseless. And all inhabitants of Dwarka, like Mata Rohini Devi, Devaki Devi, and Vasudev Maharaj, and all queens, headed by Satyama, Rukmini, Jambumanti, etc. Moreover, Uddhav came there, and moreover, the mother of wicked counsel, Padma, was there. All of them have seen my Braj mood. So Krishna feeling ashamed. How? Oh, even Krishna could not experience the glories of gopis in front of Mother Yasoda, who always eternally situated in Braj. How come I express my Braj mood in front of them? So Krishna feeling ashamed. It is not good to express my Braj mood in front of all of them. So in Vyapak Artha means first meaning, this means Sandhavasan used, three means Lajja, so Krishna feel ashamed because he expressed his idea in front of all inhabitants of Dwarka, the glory of gopis and all Brajavasis. So Krishna spoke what he was covered by dust. Why? Because when Krishna was thinking about Braj gopis, especially Srimati Radhika, then he became faint and was rolling on the ground, and Baladev Prabhu too. So after that, Baladev Prabhu thought, I had to remove his Braj dress. So he took up the feather and flew and Braj dress. When Krishna used to go for Kalkasi, he removed his dress, which he put top of his Dwarka dress. And moreover, this was full body was full of dust. The dust is stimulus and mood for grudge. So he want to remove the dust also. How is possible? So Bharatadu took him to ocean and he gave him bath and he took bath also. After that he made Krishna stable. In the meantime, Garuda appeared there and was going to sit down in front of Krishna. Then Krishna arrived on Garuda and he flew on the way to his royal palace and went inside the royal palace. Hare Krishna.
Anyone is speaking?
Who?
He knows Hindi.
सर्वज्ञो उद्धवे नाथ देवकी जी रुक्मणी मुखा प्रबोधनता पूरे देख देव भगवत पाश मास माप्त उद्धव जी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जाने वाले। जो कृष्ण क्या चाहते हैं, नारद को किसने भेजे और खुद क्या करना चाहते हैं, ये सब में जानने वाले। उद्धव जी ने देवकी मैया, रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि सबको प्रबोधित किया, संतना दिया और कृष्ण जो अंतापुर में आए हैं उनके पास में भेज दिया। उस समय समय के भाव को, तात्पर्य को समझने वाली, किस समय क्या करना चाहिए। अभी कृष्ण को यदि वृंदावन का कोई चीज स्मरण करने दिया जाए तो फिर उसी भाव में अभी झट पहुंच जाएंगे। इसलिए ऐसी कोई बात न हो उद्दीपन की जो कृष्ण अभी ब्रज के भाव में चले जाए। इसलिए इन सब विषयों को जानने वाली जो देवकी माता निकट में आया, आशीर्वाद दिया और कृष्ण को आशीर्वाद देकर के अभिनंदित करके उनके भोजन करने के लिए घट बनाने के लिए वहां से चली गई। क्यों चली गई? अभी जो बातें होने वाली है रुक्मिणी सप्तभामा के सामने, उनकी शिक्षा के लिए ब्रज की गाथा जो करने जा रहे हैं कृष्ण, वो जब उनके सामने नहीं होगा देवकी मैया के। इसलिए देवकी मैया उनका भवांतर कुछ और ठीक करके और वो चली गए। इधर वहां पर सत्यभामा नहीं आई, रुक्मिणी आई और उनकी और जो पटरानियां कृष्ण की थी वो भी आई, किंतु सत्यभामा नहीं आई। क्यों? उसको हो गया अभिमान, मान हो गया ब्रजवासियों की इतनी महिमा, उनके प्रति इतना स्नेह, हम लोग सब कुछ दे करके भी नहीं पाते हैं, इसलिए कुछ अभिमान हो गया। इसलिए वो तो रुक गई। और दूसरी बात, पद्मा वृद्धा, उसका भी यहाँ पर आगमन नहीं हुआ, उसको उद्धव जी ने नहीं आने दिया, रंग में भंग करेगी, इसलिए उसको किसी बहाने और जगह भेज दिया। वृद्धा का यहाँ पर उपस्थित रहना रस की दृष्टि से ये ठीक नहीं है। प्रभु प्रिया रुक्मिणी प्रभुति दास देवीगण पहले से ही किसी खंभे की आड़ में छिपी हुई थी। 16108 में पद्मा को छोड़कर बाकी सब खंभे की आड़ में छिपी हुई थी। किस लिए इतने छिपी हुई थी? लज्जा के मारे कृष्ण सामने नहीं जा रही, इसे छिप रही हैं, क्यों सप्तभामा देवी उस स्थान पर नहीं आए। इसलिए उद्धव जी श्री कृष्ण ने पूछा, सत्राजीत की कन्या कहाँ गई, कहाँ गई सत्राजीत की कन्या। यहाँ पर सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, अब कृष्ण अपने मुख से ब्रजवासियों, अपने माता पिता नंद यशोदा और सर्वोपरि गोपियों की विशेष महिमा का वर्णन करेंगे, जो असंकोच, जो परम गंभीर भाव है, जो कि दूसरों के सामने कहे जाते नहीं है, उस प्रेम को कृष्ण अपने आप कहेंगे। इसलिए यह ख्याल सब लोगों के श्रवण के उपयोगी नहीं है, परमा को सुनने योग्य नहीं है, माता देवकी तक को भी, वात्सल्य रस को भी सुनने का अधिकार नहीं है। इसलिए देवकी मैया को भी उस स्थान से वो इंगित किया या अपने आप वहां से हट गए। अपने हट गए और रुक्मिणी प्रभृति जो महिषियां थी स्तंभ के बीच में छिप गई पीछे में। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण की प्रिया थी, ये सुनने योग्य हैं, किंतु जिसके लिए ये कह रहे हैं वो सप्तभामा वहां नहीं है, इसलिए सप्तभामा को भी सुनना चाहिए, क्योंकि उसके प्रति मान ईर्ष्या होती है, भगवान सप्तभामा को नहीं देख करके बोले सत्राजीत की कन्या सप्तभामा कहाँ है, बड़े बिगड़ करके बोले। उद्धव जी हरिदास है, वृंदावन हरिदास उवाच वृंदावने जद्य जातो विजयो रैवताश्चिते प्रभो तदातनं भाम अभूतभ्रामकं परम। उद्धव जी हरिदास है, हरिदास करने का तात्पर्य हरि के दास हैं, हरि के भाव को जानने वाले हैं। इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं, कृष्ण ने पूछा जे सत्यभामा कहाँ गई, क्यों नहीं आई, उसके बदले में कह रहे हैं रैवत पर्वत पर, ये समुद्र के बीच में है, यहाँ पर कि आसपास में ही मथुरा को द्वारका को ही है, जहाँ पर कि बलदेव जी ने द्वित बंदर को मारा था। तो रैवत पर्वत के बीच में नौ वृंदावन में जिस समय आप वहां पर थे ब्रजभाव में, गैया चरा रहे थे सखाओं के साथ में, नंद यशोदा को मक्खन खिला रहे हैं और पुतली की भांति खड़े हैं, और जिस समय आपने राधिका जी का चुंबन किया और उनसे प्रेम में बातें ऐसे की, प्रिय तुम हमारे मन की बात जान गई कैसे, इसलिए उठी हुई हो बात नहीं करती हो, मैंने स्वप्न में देखा कुछ, अभी संक्षेप में बतला रहा हूँ, जब गोचारण करके आऊंगा तब बतलाऊंगा। जब द्वारका में मैं गया, मेरी शादी हुई, पहले मथुरा में गया और गुरु सांदीपनी के यहाँ पिताजी ने भेजा, उपनयन हुआ और इसके बाद मैं द्वारका में आया और यहाँ वहाँ पर कंस को मारा था, और यहाँ पर आकर के हमने 16108 महिषियों के साथ में शादी की, मुझे सबके गर्भ से 10-10 पुत्र और एक कन्या हुई, और मैं नाती पोती सबके साथ में बड़े आराम के साथ में यहाँ रह रहा हूँ, मैंने स्वप्न देखे। ओ शायद तुमको सपने ये मालूम हो गया, क्यों तो तुम तुम्हारी मन की सभी बात अच्छा तो इस विषय में तुम रुठो मत, बात तो सत्य है नहीं, मैं तो स्वप्न देख रहा था, स्वप्न की बातें तो तुम इसमें मान कर दिया। मैं अभी गोचार में जा रहा हूँ, वहां से लौट कर रखा करके पूरी बात तुमको आद्य उपांग सुनाऊंगा। तो उस समय में जिस समय आप रेवत पर्वत पर सुबे उस समय में आपके अभूत भ्रामक विचित्र भाव को देखने के लिए कंस माता पर जाओ। तात्पर्य आपका वो जो चरित्र था अभूत भक्ति तत्व को, भक्ति तत्व के रस तत्व को जानने वाले जो नहीं है उनके लिए अबोध वे समझ नहीं सकते, लास्ट चेष्टा करने पर भी कृष्ण क्यों रास किया, क्यों उपपति बने, क्यों नायक बने, गोपियां नायक बनी, उनका प्रेम रस का निर्जास कैसा है, बहुत गंभीर है, मूर्ख लोग नहीं समझ सकते। यहां तक कि वात्सल्य के भी ऊपर है। तो अबुध जैसे लिखा है ना दामोदर अष्टक के तृतीय श्लोक में इति दृक स्वलीला भी निमज्जन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु तद्येषु तज्ञेषु भक्ति भी जीवता। क्या तात्पर्य, तदीयेषु तुम्हारे समस्त तत्वों को जानने वाले भी कौन, नारद प्रभृति है, वो भी इस महिमा को नहीं जानते हैं, राधा और गोपियों के साथ उनके लीला है। अतएव इन तत्वों को जानने वाले वो नहीं है, जब नाग प्रवृत्ति नहीं है तो और क्या बात। इसलिए अबुध अबुध नामक भ्रामक विचित्र भावों को देखने के लिए खलस्वभावा पद्मावती भी देवकी इत्यादि के साथ में वहां पर गई थी। अर्थात तो उसको मूर्ख बना रहे थे, इसको पद्मावती तो अभी वो गई, और इसलिए कृष्ण को ये जूता नहीं देते, छत्ता नहीं देते, मक्खन भी नहीं देते, हाथ पैर बांध देते हैं, मारते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, थोड़ा सा मक्खन यदि किसी के घर से चोरी की याद तो भी मारते हैं, उलाहना देती हैं गोपियाँ। उसका उल्टा अर्थ दिया, सीधा अर्थ नहीं उसके सामने। तो बड़े बड़े सिद्धांतविद भी लोग कृष्ण की लीलाओं को समझ नहीं सकते, ब्रह्मा तक नहीं उनकी लीला को समझे तो और लोगों की तो बात, इसलिए और लीला देखने के लिए चले किंतु भूल कर दिया, परीक्षा करने लगे, परीक्षा करना ही उनका ये गड़बड़ हो। इसलिए पद्मावती देवकी इत्यादि के साथ में किसी वृक्ष की आड़ में खड़ी होकर के देख रही, परंतु दुर्बुद्धि पद्मा उसको उस लीला को देख करके क्या कामने लगी, अरे पुण्यहीना देवकी, अरे दुर्भाग्य रुक्मिणी, अरे नीच सत्यभामे, अरे नीहीन जामोती आदि रमणीय, हाय हाय, अरे कृष्ण की ऐसी चेष्टा नहीं देख रहे हैं। अब अपना अपना अभिमान छोड़ो और अभिरियों की दासी बनो, अभिरी किसका प्रयोग किस लिए किया, वैश्य नहीं कहा, वैश्य भी द्विजाति में आ जाते हैं, अधीर खसर पूरा अंतरा ये सब अस्पृश्य जातियां हैं, तो इसलिए उनका अभी नाम लिया मैंने, ये भी उसी जाति के हैं। इसलिए तो इसलिए आप ही बतलाया अभिरिणाम ही दास्याय तपस्याम कुरुते उत्तम। और कृष्ण का भाव ये देखा, जो आज तक द्वारका में नहीं प्रकट हुआ इतनी रानियों के सामने, जिसको कृष्ण कभी भी उतना नहीं पूछते और ब्रजवासियों के आके मक्खन मांग रहे हैं उनके चरण पकड़ रहे हैं, उनको बंसी से यहाँ पर छू रहे हैं, हंसते हुए कहते हैं, उनके प्रेम के वशीभूत हो गए हैं, तुमने जाओ अभिर्यों की तपस्या करो, उनके भावों को पाने के लिए तपस्या करो, बहुत कुछ बोल दिया, इसलिए तुम्हें लज्जा आनी चाहिए इतना कहने के बाद। ये कौन कह रहा? हरिदास उद्धव कह रहे हैं इन भावों को, कृष्ण को सुना रहे हैं ये क्यों नहीं आई, तो उसमें अभी थोड़ा सा बदला है। चलो
हरे कृष्ण Buddha told Uddhava is sarvajna, means omniscient, he knows everything. So Krishna, what Krishna want, what is his inner desire, he knows everything. Who are he Ishvara Narad and who are he Saint Narad, the place of Ganga Sagar, the king of South India and other places. Uddhava, Devaki Devi, Rukmini, Uddhav consoled Devaki Devi, Rukmini Sattvam and other queens. And when Krishna came in royal palace, inside his room, so Uddhav sent all of them. Why? Because Uddhav want to take Krishna away from Braj mood. If again stimulation mood of Braj will come, Krishna may absorb in Braj mood. So some or other, who is not given a chance to Krishna being absorbed in Braja mood. So who is very expert according to time beings. So Devaki Devi came to Krishna and placed him. And for his meal, he went to kitchen for cooking something. And Rukmini and others came there. Why Rukmini Devi went away from there? So Gurudev told that what discussion will take place very soon. Why Devaki went away? Because what dialogue will take place between Krishna, Rukmini and other queens, Devaki is not qualified to be present there. So she went away. After that, Rukmini and other queens came there, except Saptabhama. Why so? Because Saptabhama became sulky. Oh, Krishna has so much love for Brajavasis. He has so much love for Brajgopis. He loves for cows and sakhas. She could not tolerate this. So she became sulky. And Uddhavji not allowed to Padma came there. Why not? He sent Padma anywhere else. Because Padma's mood against of Braj mood. And all other queens, they're hiding under a pillar. Why? Because the pillar sent. Krishna asked Uddhav, I have seen everyone. Why not Saptabhama? Where is she? What is the cause? Why she is not coming? Sanatana Goswami told here, Krishna want to explain the glory of Braj and Brajavasis, especially Sakhas, parents and gopis. Especially when we explain the glory of gopis, that everyone is not qualified to listen to the Braj gopis. Every the Vatsala Gati, the parental mood, Devaki Devi, she is not allowed to stay there because in front of the heart, it will not be expressed. So she went away herself. And Rukmini and others, they came in front of Krishna but hide themselves under a pillar, behind a pillar, then Krishna can see them. They are qualified to hear the cry of Rajavasi, especially Rajagopi Sohai, because they are queens of Krishna, therefore they are qualified to hear all these things. And Satyamana became sulky, he has some envious mood. So Krishna became very angry and told Uttara, where is Satyabhama? Why is he not coming? What is the cause of his her absence? Then Haridas, Haridas means who knows the heart and mood of Hari. There are three Haridas, Yudhishthira Maharaj and Uddhavji and Viraj Govardhan. So Krishna asking Haridas, oh, why Satyabhama is not coming? What is the cause? Then Uddhav is glorifying here, describing here, when you went in Raivata Parvat, Raivata Parvat means all around Raivata Parvat, Dharakapur is there, and where Balade Prabhu killed the monkey named Devi. Then Uddhav told, oh Prabhu, when you were completely absorbed in Brajmur, and he was grazing cows, and Vishwakarma made so many living statues by the order of Brahmaji. You have stolen water from the hand of Mother Yashoda, and you look towards Nanda Baba, especially when you embrace Radhika Devi and told, oh, don't be angry. So, how you knew my dream? Maybe you are Sarvatra, you know everything, you know everything. What maybe it is merely a dream, don't worry. I have seen only dream that I giving up all Brajavasis, you too. I first went to Mathura, after that there is a separate ceremony. I went to Gurukul, then I came to Dwaraka, and I married so many queens. After that, I get 10 children, sons and one daughter from each and every queens. I am very happy with my children and grandchildren. Oh, what is only dream you are so early? It is merely a dream, it is not true. Why sorry about dream? Okay, this is not true at all. So you will not be angry with me. Okay, let me go for cow grazing. When I will come back, then I shall explain everything in details to you. Now let me go for cow grazing, don't worry, don't be angry. Then Rudra told that when you express your avar charitra, the variety of the character, different type of character in your charitra, in your character. So Rudra is on word avar. Avar means who is unable to understand Krishna's mood, they are called avar, like Padma Devi. Rudra will explain later on. Why Krishna made Ras dance? And what is the essence of Prem Ras? What is this and that? Who couldn't understand, they called abode, like Padmavati. Then we quoted one slope from Damodarashtakam. Iti dik salilabhi ananda kunde, samasam nivajjantam, akhapayantam, tadiye sitarkesu bhaktar jitapkam, punapremakastam satamiti bande. Krishna by his all pastimes is drowning the whole Brajavasis by his pastimes. So here, Tadiya Sitagyesu means who knows your all Tattva. Even another others, they could not understand all of this your very confidential pastime. So how Padma can understand? So he sees above. And moreover, Padma is wicked nature. He told to Devaki, oh, Punmahina Devaki, you have no good quality, good activity. And he told to Rahini Devi, Durbhaga, and others. And he told there, always all things opposite. Oh, Why Krishna so much love for Rajavasis or Rohini? Maybe they gave you so much goros means milk production, so you are taking side of Rajavasis. All Rajavasis, they are wicked. In Padma's language, the wicked mother of Kamsa. So they never give supply any shoes to Krishna, no umbrella. And even they are not giving any butter. If he give to fulfill his stomach, if he take any butter from anywhere, they bind his hand, everything. So he's taking all opposite meaning. So she is above. Maybe very great Siddhantavid who knows all kind of conclusion, even they could not understand. What to say about others? Even God-headed Brahma could not follow this. So Brahmaji want to see more pastimes, but he want to test Krishna, this is his fault. Then Padma Devi told, and Padma told us before, Durhari Devaki, you are bad fortune, and Purnahina Ramini, you have no good accent, good karma. And he told to Satyabhama and Rukmini, now give up your all false ego, and be made servant of Abhirganna. So all gopis, they came in according to material world, they came in Vaishya dynasty. In Vaishya dynasty, they are in four varna. So Padma is not telling them Vaishya. She is criticizing as Abhi. Abhi means who is outcast. So in Bhagavad Gita, one slok, Kira Tunanta Pulinda Kukka Sajavana Pasadaya Jyamni Chapapa Jadapa Shreya Shreya Prabhatasmai Yoga Vishna Vini Namaha. Who may be outcast, low caste, whoever do bhajana Krishna, they are pure. So Padma is not taking by this sense. He want to make them very down. So he is using Abhiri. Abhirikarna means very low caste. So Krishna, being in Dwaraka, he has so many queens. 16,108, Krishna knew her, expresses his braj mood. And in Vaivata Parvat, Krishna is playing on flute and pick up feather. Sometimes he touching the chin of Radhika and gopis, and what he did so many first times, in front of all of them, being actually in braj mood, he never ever manifest in Dwaraka. So Padma is telling them, so we have to be men servant of Abhinikarna for them, for this we have to do some austerity. Then maybe one day we will be men servant of Abhinikarna. It's true, if you do austerity and get the men servantship of Gopi, it is very fortunate, you are very fortunate. But Padma is not telling in simple meaning, he is taking as a criticism way and very
मैं गोचारण से लौट आऊंगा. इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन क्या होगा? जब मैं गोचारण से लौट आऊंगा. When? No use of will. No use of will.
Yeah. We will come back. It's also good.
When
I will come back when I return.
When I will return.
Achha. But Padma told in the last you are hearing?
Yes, sir.
Arjun Krishna.
She was not appreciating the
food
of the
Rajavasis. So what she uttered? For Rukmini, Satyabhama and Devaki.
She was saying fire on them, on Rajavasis not giving Krishna shoes and sending him for cow grazing. Because she has the perspective of a materialistic person who has no adhikar, no ability to appreciate bhakti tattva and what is the quality of the devotees. So she had no appreciation of Brajamud, and so she was saying fie on them, and who are these Brajavasis? They are lower caste, Vaishya.
Why she told Durbhagi Durbhage Devaki. Why?
She's saying that, oh, you are unfortunate because Krishna has this attachment for these Bhaktivasis who are cowherds. And so she's thinking that Krishna is dishonoring them. But actually Krishna is showing greatness of the gopis. But from her perspective, she is thinking that, oh, these are daughters of kings, but they have been dishonored in this way.
Why he told Rukmini Saptamama of, or Neech? Durbhage.
Because she is telling, Padmavati Devi is telling to the queens that you have this abhiman, that you are so fortunate, that you have Krishna as your husband, and he is very much attached to you. But in actuality, now you can see, just see, how actually, for all the time, Krishna was not attached to you, and actually he was so much more attached to the Braja Gopis. So you're Durbhagi, you're unfortunate. You should give up all of your pride. Fie unto you, fie unto you.
And what to do?
And that you should become the servitors. You should become the slaves of the Braja Gopis.
And who are they? Braja Gopi? Abhiri. Why Abhiri?
As Prabhuji was explaining, Abhiri, she was not telling that they were Vaishyas in some proper caste within the Varnashram, but rather they were like outcasts, Abhir. That, like he quoted this verse from Srimad Bhagavatam, of the different outcasts, Kirata Kunandra Palinda Pukashad, Abhira Shumba Yavana Kashadaya. So, so many different outcast tribes are mentioned there. So she was also addressing these Vaishya caste as actually being outcast from the Varnashram system, Abhira.
Jai Radha Madhava Jai Kundi Jai.